आनंद धाम से दिए तस्मिन् पदे सुमम चित्तम रोचते यस्तद्व्रजस्थितिगृहाम् सुहृदाम् कुमार तीनामधीनमिवगोचरताम् वैति यावन्निरञ्जनमजम् पुरुषम् जरन्तम् सञ्चिन्तयामि निखिले जगदीश्परन्तम्
लिए काम करे ऐसे वो काम करना कर देगा शुरू तो करते करते अगाड़ी चल कर के और उसका ये देहाध्यास कम हो जाएगा। अगाड़ी चलकर उसका देहाध्यास कम होगा जब जिसके मन में सेवा करने का भाव अधिक होगा तो अधिक सेवा करते करते उसके जो दूजे आदमियों को जो सुख मिलता है सेवा करने से उस सुख की तरफ दृष्टि अधिक हो जाती है, दूसरे के सुख में सुखी होने की वो भावना अधिक हो जाती है तो स्थूल शरीर का अभिमान उसका कम हो जाता है और स्थूल शरीर के अध्यास कम होने पर उसकी पहचान क्या होगी कि क्रिया करने में इतना मन नहीं लगेगा जितना मैं मन चिंतन करने में, भजन करने में, भगवान को याद करने में, ऐसे चित्त का ज्यादा प्रवाह होगा चिंतन करने का। और स्थूल शरीर की प्रधानता होने पर काम करने की मन में ज्यादा आवेगी, कई तल बैठे काम करो, भजन ध्यान करता, नित्य कर्म करता, तब हो गया, अब चलो करो कुछ न कुछ, ऐसी मन में अधिक आवेगी तो स्थूल शरीर की प्रधानता है। फिर काम करते करते या वो छोड़ो, अब तो चिंतन करो और चिंतन में लग जाते 10 घंटा बैठा रहो, बोले मन हटे ही नहीं, चिंतन में लगे, चिंतन होता ही रहना चाहिए मेरा। इसकी जब प्रधानता होती है तो समझना चाहिए कि स्थूल शरीर की प्रधानता कम हो गई और सूक्ष्म शरीर की प्रधानता अब हुई है। अब सूक्ष्म शरीर में मैंपन दृढ़ता से है और वो चिंतन की आसक्ति है, वो भी राग चिंतन करने करते करते चिंतन के बीच में उतना रस न आकर के राग न रह करके और स्थिरता की तरफ चित खिंचाव होगा कि चिंतन न होकर परमात्मा में अटल लग जाए, ना तो नींद आवे ना कोई फुरना हो, अटल भगवान में मेरा मन लगा रहे और उस समाधि में ही रहने का मन करे और स्थिरता उसकी पैदा हो जाए, चिंतन मिट करके स्थिरता पैदा हो जाए, ऐसी स्थिरता उसी में निरंतर रहने का मन करता है, आकर्षण होता है, तो समझना चाहिए कि कारण शरीर की प्रधानता है। स्थूल और सूक्ष्म के प्रधानता का जो भाव था वो मिट गया, हट गया, अब कारण शरीर की प्रधानता रही है। तो कारण शरीर की प्रधानता है वो होता है समाधि में सुख, स्थिरता में सुख, उसमें आनंद होता है और उससे ऊंचा उठेगा तो स्थिरता है, उस स्थिरता में रस नहीं आएगा, किंतु स्थिरता जिससे प्रकाशित होती है, जिस प्रकाश में स्थिरता दिखती है, जिस ज्ञान के अंतर्गत स्थिरता और चंचलता दोनों प्रतीत होती है, उसमें स्वतः स्थिति होने पर वो स्थिरता का रस नहीं आएगा परंतु स्थिरता की शांति बनी रहेगी, स्थिरता भंग नहीं होगी परंतु स्थिरता में आकर्षण नहीं होगा। स्वतः तब समझना चाहिए कि अब तीनों देहों से तीनों गुणों से अतीत हुआ, फिर क्रिया की प्रधानता हो जाए तो वही आनंद, चिंतन की प्रधानता हो तो वही आनंद, स्थिरता की प्रधानता हो तो वही आनंद, इनमें किसी एक के प्रति विशेष साधक का आकर्षण नहीं होगा, ना तो काम करने पर आकर्षण होगा, ना चिंतन पर आकर्षण होगा, ना समाधि पर आकर्षण होगा, किसी पर खिंचाव नहीं होगा, भक्त पर जो आ जाएगा वो ही निर्लिप्तता से होगा, निर्णय होकर क्रिया करेगा, भले मशीन की तरह क्रिया करे, कोई आग्रह नहीं, और क्रिया वो छूटते ही वो ही शांति से बैठा है, उसमें कभी ऐसा नहीं कि अब कुछ न कुछ करे, ये आग्रह नहीं रहेगा, और करे तो ये आग्रह नहीं रहेगा कि क्रिया को छोड़ो। नहीं वतस्य कृते न अर्थ, नहीं वतस्य कृते न अर्थ, ना कृते नहीं है कस्तन, न तो करने से कोई मतलब रहेगा और न करने से कोई मतलब रहेगा, वो करने के बीच में समाधि तक ही करना ही है, क्रिया करना, चिंतन करना और समाधि करना सब करना ही करना है, समाधि से कोई प्रयोजन नहीं, क्रिया से प्रयोजन नहीं, चिंतन से कोई प्रयोजन नहीं। उसके द्वारा क्रिया होती है, वो आदर्श क्रिया होती है, स्वतः स्वाभाविक, जिनके क्रियाओं से शास्त्र बनते हैं, शास्त्र बनते हैं, दुनिया का आदर्श होता है। इस वास यदि आतरती श्रेष्ठ तत्व देवी तरुजना स यद प्रमाण गुरुते लोकस्तुवर्तते, उसे किसी में आग्रह नहीं। इस वास्ते उसका आदर्श आचरण मात्र दुनिया के लिए, जो जो वो आचरण करता है वैसे लोग आचरण करते हैं, और वो जिसको प्रमाणित कर देता है कि ये बात ठीक है उसको लोग मानने लग जाते हैं, स्वतः स्वाभाविक लोगों पर असर पड़ता है। और जितने जितने क्रियाओं से उपरति होगी स्वाभाविक, क्रिया छोड़ना नहीं, क्रिया छोड़ने से होता है आलस, जो तमोगुण है, पतन करने वाला है, उससे क्रिया करने में आसक्ति बहुत ऊंचे दर्जे की है, वो रजोगुण है। अगर छोड़ने का मन करता है, नींद में, आलस में, निकम्बापन में समय जाता है, अथवा ताश चौपड़ में, सिनेमा में, हांसी दिल्ली में, बीड़ी सिगरेट में, नशा पता करने में समय जाता है, और काम करने का मन नहीं करता है, वो असली नरकों का रास्ता है, तमोगुणी है, अधोगच्छन्ति तामसा। इस वास्ते निठल्ला रहता और काम करने का मन नहीं करता तो वो हरामीपन है, वो कमकशपना है, वो कामचोर आदमी है, वो शरीर से खटना नहीं चाहता है, इस वास्ते हाडमांस का दास है, शरीर की प्रधानता नहीं है, शरीर से भी नीची प्रधानता, वो क्या कहते जैसा है, वो बहुत ही ज्यादा जड़ता है उसमें। इस वास्ते ऐसी भाव है जो वो तो बड़ा पतन करने वाला, परंतु क्रिया करता है, क्रिया करते हुए चिंतन होता रहता है, क्रिया करते हुए भाव मेरा बढ़ना चाहिए, भगवान में मेरा प्रेम होना चाहिए, ये भाव उसके स्वतः रहेगा तब ऊंचा बढ़ेगा, तो वो निरर्थक नहीं खोता समय, वो प्रमाद में समय नहीं खोता, प्रमाद तो दूर रहा, आसक्ति में भी, स्वार्थ में भी समय नहीं खोता। साधक की एक ऐसी अवस्था होती है कि स्वार्थ भाव उसका कम होता है, लोभ कम होता है, आसक्ति कम होती है, विषयों में आसक्ति कम होती है, और फिर भी काम करना नहीं चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, ऐसी एक अवस्था होती है, तो उस अवस्था में साथ में विवेक विशेष विचार न रहने से उसके साथ में एक भूल रहती है शरीर के आराम की। दिखता है कि मेरा साधन करने में मन ज्यादा है, परंतु शरीर में आराम उसको साथ पकड़ता है, तो उधर तो सात्विकता है, इधर इधर तामस बना है, ये दोनों साथ रहता है साधक। उसकी पहचान क्या होगी कि जब एकांत समय अधिक मिलेगा तो निद्रा अधिक बढ़ जाएगी, नींद आलस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो समझना चाहिए कि मैं जो एकांत में चार भजन करना चाहता हूँ वो शुद्ध नियत नहीं है, किंतु शरीर के आराम की इच्छा भी साथ में है, इस वास्ते मिश्रित इच्छा है एकांत की, काम करना नहीं चाहता परंतु साथ में तमोगुण मिला हुआ है, उस तमोगुण को दूर करने के लिए जहां तक बने साधक को सब काम छोड़ करके साधन में जल्दी जल्दी नहीं लगना चाहिए, अपने जिम्मेवारी का काम जरूर रखना चाहिए साथ में, जिससे भी तमोगुण उसको न घेरे, और एकांत में नींद न बढ़ करके भजन बढ़ जाए, और एकांत में नींद कम हो जाए, काम करते हुए भजन ध्यान करते थे उससे नींद अधिक आती थी, अब एकांत में ज्यादा मिल गया समय तो अब नींद उतने से भी कम हो गई, तो उसको एकांत का समय बढ़ाना चाहिए, उसका स्थूल शरीर का अध्यास मिटा है, इस वास्ते वो एकांत का समय बढ़ाना चाहिए। कहीं संसार की फुरना ज्यादा हो अथवा नींद ज्यादा हो, आलस्य प्रमाद ज्यादा हो, तो उस आदमी को एकांत का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। एकांत का सेवन वो ऐसी चीज है, काम छोड़कर एकांत लगना वो ऐसी चीज है कि जो आपके भीतर चीज होगी उसको बढ़ा देगा। जैसे दूध होता है तो निरोग की पुष्टि करता है, रोगी के रोग का साथ देकर रोग को बढ़ा देता है, इसी तरह से एकांत है, सात्विक पुरुष का तो भजन बढ़ाएगा, राजसी पुरुषों को संकल्प पर मनोराज्य तरह तरह का विचारों को बढ़ाएगा, और तामसी पुरुष के आलस और नींद को बढ़ाएगा, तीनों ही गुणों को बढ़ाने वाला है एकांत। जो भीतर में होगा उसके बढ़ जाएगा, पता लग जाएगा ये है। इस वास्ते साधक को खूब सावधान रह करके काम करना चाहिए, सावधान रहकर एकांत में रहना चाहिए। तो इस वास्ते भजन ध्यान चिंतन का अधिक मन करता है और काम सुहाता नहीं, ऐसे समय में काम आवश्यक आ जाते हैं, बड़े गुरुजनों के कहने से काम करता है, वो तत्परता से काम करता है, तो वो काम उसका बाधक नहीं होता, किंतु साधन बढ़ाने वाला होता है, आसक्ति का नाश करने वाला होता है। कारण के काम करने की रुचि तो है नहीं, और पूज्य जनों के आदेश से वो काम करता है, तो वो काम का करना बंधन कारक नहीं होगा। प्रत्युत काम में आसक्ति होगी, काम करने में क्रिया में आसक्ति, उस आसक्ति को मिटाने वाला हो जाएगा वो काम, क्योंकि वो क्रिया करता है आसक्ति से नहीं, किंतु सिद्धांत को लेकर आज्ञा को लेकर वो क्रिया कर रहा है, इस वास्ते आसक्ति मिटेगी। परंतु कब के सावधान होकर के क्रिया में सुख नहीं लेगा, क्रिया के साथ में तल्लीन नहीं होगा, उसमें रस नहीं लेगा, उस क्रिया में रस बस नहीं जाएगा तब, और क्रिया के फल में नहीं रस बचेगा। क्रिया का फल काम हो गया, पूर्ण हो गया तो सुख आया, फिर काम अधूरा रहेगा तो दुख हुआ, ऐसी वृत्ति रहेगी तो क्रियाओं की आसक्ति नहीं छूटेगी। काम अच्छे से अच्छा किया, उत्तम से उत्तम किया, और उसकी महिमा नहीं मिली, वाह वाह नहीं मिली तो चित खट्टा हो जाए, और वाह वाह मिली तो राजी हो गया, काम सांगोपांग पूरा हो गया तो चित में प्रसन्नता हुई, और किसी कारण से अधूरा रह गया, हमने पूरा उद्योग कर लिया फिर भी काम पूरा नहीं हुआ तो दुख होता है मन में। अथवा क्रिया करी जिसका फल मिल गया अच्छा, तब तो सुख होता है, और फल नहीं मिला तो चित्त में रंजकी आती है, दुख होता है। ऐसी जब तक अवस्था रहती है तब तक बड़ों की आज्ञा पालन करते हुए भी क्रिया की आसक्ति नहीं मिटती, स्थूल शरीर की आसक्ति नहीं मिटती। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्तद उच्यते। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, न तो इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति होती है और न क्रियाओं में भी आसक्ति होती है, तो आसक्ति नहीं होगी, तो जब फल में आसक्ति नहीं होगी तो चाहे महिमा हो चाहे निंदा हो, चाहे उस क्रिया का फल मिले चाहे न मिले, मन में एक रूपता समता रहेगी। ऐसे क्रिया में आसक्ति नहीं होगी, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु, कर्मसु न अनुसज्जते, कर्मों में आसक्ति नहीं होगी तो क्रिया सांगोपांग पूरी होने में और न होने में मन में विकार नहीं होगा। और आसक्ति जब तक होगी तब विकार हुए बिना रहेगा नहीं, और जितना निर्विकार होगा उतना ही क्रिया के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, और जितना ही जितना विकार होगा उतनी क्रिया सिमटी रहेगी, छूटेगी नहीं, करते करते भी नहीं छूटेगी, न करने पर भी नहीं छूटेगी। और आसक्ति न रहने से क्रिया की जाए, आसक्ति नहीं की जाए तो आप से आप क्रिया से ऊंचे उठ जाओगे, फिर क्रिया आप पर सवार नहीं होगी, आप स्वतंत्र हो जाओगे, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, उसमें सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहेगा स्वतः। ऐसी जब अवस्था होगी तो समझना चाहिए कि स्थूल शरीर की आसक्ति हमारी नहीं रही है, परंतु चिंतन होता है, उस चिंतन में हमारी आसक्ति है कि नहीं है, तो चिंतन होता है भगवान का, उसमें एक प्रेम होता है, एक आसक्ति होती है, वो किसी तरह से हो जाए बढ़िया है, आसक्ति भी बढ़िया, परंतु प्रेम हो जाए तो और बढ़िया। तो चिंतन में आसक्ति होती है तो फिर कोई काम धंधे का कह देता है तो बुरा लगता है, मन में दुख लगता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, काल फिर बैठता है भजन में तो वैसा फिर मन नहीं लगता, कारण के क्रिया की आसक्ति साथ में है, आसक्ति साथ में होने से विरुद्ध हुआ और द्वेष पैदा हुआ, कामना क्रोध हो भी जाए थे, कामना नहीं होती क्रोध पैदा नहीं होगा, कामना होगी और बाधा लगेगी तब क्रोध पैदा होगा। तो चिंतन में आसक्ति नहीं है, भजन ध्यान में आसक्ति नहीं है, प्रेम है तो बाधा लगने पर क्षोभ नहीं होगा, शांतिपूर्वक उस काम को करके फिर चिंतन में लग जाएगा, और वो शांति भंग हो जाएगी तो दोबारा चिंतन में लगेगा तो ना तो चिंतन होगा ना उधर काम होगा, ऐसी साधक की कमजोर अवस्था एक हुआ करती, उसको वो साधक पकड़ नहीं पाता कि हमारी कहाँ कमी है, क्यों कमी है, तो उसको ये पकड़ना चाहिए कि हलचल होती है, उद्वेग होता है तो हमारे क्रियाओं के आसक्ति क्रियाओं के त्याग में आ सकती है, जिसका कर्मणी एव अधिकार अस्ते माँ फलेशु कदाचन अरे माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु अकर्मणी, अकर्मण्यता में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं करने पर भी आग्रह नहीं चाहिए, करने पर भी आग्रह नहीं चाहिए, कहीं भी आग्रह है ये बांधने वाला है, वो गुणों के साथ में संबंध जोड़ने वाला है। तो जो ऊंचा उठेगा, भजन चिंतन ज्यादा होगा, भगवान में मन अधिक लगेगा, क्यों ही स्वाभाविक ही शांति मिलेगी और क्रियाओं के त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। अभी जान करके त्यागता है, ताकत नहीं है, इस वास्ते भजन ध्यान में कोई बाधा दे देता है तो जल उठते हैं, उसमें कारण है कि वो सहने की शक्ति नहीं है। अनेक इतिहास आते हैं, एकांत में तपस्या करी और भजन ध्यान किया, और तपस्या करते करते इंद्र को जब मालूम हुआ कि मेरा ये इंद्रासन ले लेगा, तब वो कामदेव और अप्सराओं को भेजता है, बसंत ऋतु को भेजता है, और उसके सामने भी बसंत ऋतु आती है, अप्सराएं आकर के नृत्य करती है, कामदेव आकर जोर लगाता है, ऐसी वो देख करके और चित्त आकृष्ट हो जाए, चित्त उसमें रम जाए, तब भीतर आसक्ति पर ये राग है, और चित्त रमता तो नहीं, आसक्ति नहीं होती, परंतु उन पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसने हट से आसक्ति को हटाया है, सर्वथा वैराग्य नहीं हुआ है, इस वास्ते क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं, कामदेव को श्राप दे दे, अप्सरा को श्राप दे दे, परंतु ना तो उनमें आसक्ति होवे, ना श्राप देवे और ना अपने धर्म से विचलित होवे, तो असली साधक है वो। अब वो बनावटी निपण नहीं है, जबरदस्ती भोगों का त्याग नहीं है, भीतर में आसक्ति नहीं है, इस वास्ते कोई असर नहीं होता। तो नरनारायण जब तपस्या करते थे, अप्सराओं ने इस तरह से जाकर के उनकी तपस्या भंग करना चाहा, तो ना तो वो गुस्से में आए और ना उनकी आसक्ति हुई, तब उनकी बड़ी प्रशंसा है। भागवत में आता है ऐसे ऋषि मुनि बहुत कम होते हैं, कहा तो देते साप और कहा हो जाते हैं आसक्त, काम अथवा क्रोध दो के बसीभूत हो ही जाते हैं। अब ना काम के बसीभूत हुए, ना क्रोध के बसीभूत हुए, तो उन्होंने क्या किया कि एक उर्वशी अप्सरा सुंदर बना करके और दे दिया कि ले जाओ, ये हमारी अप्सरा ले जाओ, वैसे स्वर्ग में ये अप्सरा नहीं थी। अब उनको क्या बिगड़े, क्या क्षुब्ध करे वो। तो जब ठीक साधक होता है तो राग मिट जाता है सर्वथा, तब काम और क्रोध दोनों पैदा नहीं होते, फिर स्वाभाविक शांति रहती है, आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है। तो कहते जिसके राग द्वेष होता है वो क्या करे, वो साधक क्या करे, कि वो साधन भजन चिंतन ज्यादा बढ़ाए और विवेक पूर्वक करे, हट पूर्वक नहीं। त्याग होता है वो त्याग भी विवेक पूर्वक करे, क्रोध पूर्वक नहीं। क्रोध पूर्वक त्याग होता है वो त्याग नहीं होता है, क्योंकि त्याग तो वस्तु का किया, भोग का किया, परंतु क्रोध को पकड़ लिया ना, तो क्रोध से संबंध विच्छेद नहीं हुआ, तो त्याग कहाँ हुआ, इधर भोग का तो हुआ त्याग, और क्रोध को लिया पकड़, और क्रोध नहीं किया तो भोग को पकड़ लिया, तो त्याग नहीं हुआ। त्याग उसका नाम है जो आसक्ति भी नहीं, द्वेष भी नहीं है, न द्वेष ही अकुशल कर्म कुशले न अनुसज्जते, त्यागी सत्व समावेष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेषी अकुशल कर्म, अकुशल कारक कर्म है, सकाम कर्म भी अकुशल है, निषिद्ध कर्म भी अकुशल है, जो अगर जन्म देने वाले कर्म है भी अकुशल है, उन अकुशलों का त्याग तो है परंतु क्रोध पूर्वक नहीं है। न द्वेषी, त्याग तो करता है परंतु द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करता है, और कुशले न अनुसूचते, कुशल कर्म करता है परंतु आसक्ति पूर्वक नहीं करता है, राग पूर्वक नहीं करता है, स्वार्थ बुद्धि से नहीं करता है, तो किस बुद्धि से करता है, कि भाई शास्त्र की आज्ञा है, तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित हो, करना और न करने में शास्त्र की व्यवस्था है। और है क्या हमारी व्यवस्था, हमारी इंद्रिय सिंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो, व्यवस्था तो हमारी भी है उनकी भी है, दोनों व्यवस्थित है। पर तो हरेक हम काम करते हैं उन कामों में राग और द्वेष व्यवस्थित रहते हैं, और साधकों के शास्त्र व्यवस्थित रहता है, उनके भी राग द्वेष आते हैं, परंतु राग द्वेष के वशीभूत काम नहीं करते। इस वजह से शक्नोति एव यह सोढुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भवम बेगम सयुक्त स सुखी नर, काम और क्रोध के उत्पन्न होने वाले वेग को सहने में समर्थ है। इंद्रिय सेन्द्रिय स्यार्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न वशम आगच्छेत, राग और द्वेष तो होते हैं परंतु उनके वशीभूत नहीं होते, अर्थात राग पूर्वक ग्रहण नहीं है, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं है। वो कोई किसी काम में प्रवृत्त होते हैं तो राग को लेकर नहीं, किसी से निवृत्त होते तो द्वेष को लेकर के नहीं, तो किसको लेकर के, शास्त्र को लेकर, महापुरुषों की आज्ञा को लेकर, सिद्धांत को लेकर प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। उनकी प्रवृत्ति भी शास्त्र को लेकर होती है और निवृत्ति भी शास्त्र को लेकर होती है। जैसे रोगी आदमी होता है वो जो कुछ खाता है वो वैद्य को देख रेख में पथ्यापथ्य का विचार करके और ग्रहण और त्याग करता है, और निरोग होता है वो चाहे सो चीज खाता है, परंतु रोगी होता है वो अगर चाहे जो चीज खावे तो मर जाए, रोग बढ़ेगा, उसको तो खाने न खाने में रुचि देखनी नहीं होगा। तीन तरह के आदमी होते हैं, ध्यान देना। एक होता है रोगी, एक होता है निरोग, और एक होता है साधकों से दर्जे। तो रोगी होता है उसकी रुचि होती है कुपित करने की, उपित चीज खाने की, तो वो खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए कि वैद्य ने मना कर दिया, आयुर्वेद मना करता है, इस वास्ते नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाता है। और आयुर्वेद कहता है, वैद्य कहते हैं, हितेशी कहते हैं, हमारे जानकार, वो चीज हम खाते हैं, तो वो वैद्य है, वो वैद्य है, आयुर्वेद शास्त्र है वो प्रधान है, उनकी आज्ञा से खाना पीना चलता है, तब वो निरोग हो जाता है। और जो निरोग आदमी होता है साधारण, वो खाता है रुचि के अनुसार, जब जैसी मन में रुचि है वो रुचि के अनुसार खाता है, तो वो होता है भोगी। ये चीज भाती है, ये चीज नहीं भाती, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ऐसा करता है, तो वो उसका जो कहना होता है, खाना होता है, वो होता है रुचि पूर्व, तो भोगी होता है वो, एक बढ़िया लगता है एक घटिया लगती है, ऐसी चीजें लगती है, बढ़िया खाता है घटिया छोड़ देता है, आसक्ति पूर्व वो रागी और भोगी होता है। और साधक होता है उसका बढ़िया और घटिया की तरफ वृत्ति नहीं रहती है, किस घटिया बढ़िया, अगर जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो बढ़िया, इंद्रियों को बुरा लगे ये घटिया, ये उसकी नहीं रहती कसौटी, उसकी कसौटी रहती है शास्त्र पर और रहती है साधन पर, जिससे साधन अच्छा बने वो चीज सेवन करेगा, जिसमें साधन बाधा हो जाए, बाधा लग जाए, वो चीज का त्याग करेगा, उस चीज का छोड़ेगा, तो साधक की ऐसी वृत्ति होगी। ग्रहण त्याग सबका होता है, रोगी का भी ग्रहण त्याग है, निरोग का भी ग्रहण त्याग है भोगी का, और योगी है साधक उसका भी ग्रहण त्याग है। तो रोगी का है वो निरोग होने के लिए, और भोगी का भोग भोगने के लिए है, और साधक का भोग रूपी रोग मिटाने के लिए है, इसको भी निरोग होना है। तो भोगी तो रोगी है ही बेचारा, और साधक भी रोगी है, जितनी भोगे चाहे उतना रोग है, इस वास्ते भोग बुद्धि से ग्रहण और त्याग नहीं करता, किंतु शास्त्र को सामने रख, साधन को सामने रखकर अपनी प्रकृति को सामने रख करके और खाना पीना आदि खाता है। साधक जिससे ठीक बनता है साधन, वो चीज खाता है, और साधन में बाधा लगे, मन भी चले तो उस चीज को नहीं खाएगा। मन तो चले भोग बुद्धि से, पर वो कहते इससे साधन बढ़िया नहीं होगा। जिसके साधन की रुचि नहीं है, इधर ध्यान नहीं है ज्यादा, वो भोग की रुचि को रोक नहीं सकेगा। कार्य के तात्कालिक सुख मिले वही अच्छा, पर साधक होता है उसकी वृत्ति होती है कि तात्कालिक तो सुख इसमें मिलता है, पर हमारे साधन में कितनी बड़ी बाधा लग जाएगी, वो बड़ा नुकसान नहीं सह सकेगा छोटे से सुख के लिए। इस वास्ते राग बुद्धि से पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, विवेक बुद्धि से पदार्थों का सेवन करेगा तो वो साधक होगा। और इससे भी जब ऊंचा उठ जाता है तो वहां राग और द्वेष मिट जाते हैं सर्वथा, फिर शास्त्र की क्रिया करनी नहीं पड़ती है। जब तक हमारी प्रवृत्ति इंद्रिय सेन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, राग द्वेष लेकर के हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति रहती है, तब तक शास्त्र को सामने रख करके प्रवृत्ति निवृत्ति करनी चाहिए। और जब हमारी राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति मिट जाती है, तब शास्त्र है उसके अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, फिर शास्त्र को सामने रखना नहीं पड़ता। फिर शास्त्र को सामने नहीं रखना पड़ता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब शास्त्र उसके पीछे चलते हैं, अर्थात उसके आचरणों से शास्त्र बनते हैं, उनके वचनों से, उनके आचरणों से, उनकी आज्ञा से शास्त्र बनते हैं, तो उनके आचरणों के पीछे शास्त्र चलते हैं। अभी कोई साइकिल भी चलाता है तो पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद साइकिल चलाता है तो ठीक है, नहीं तो गिर जाएगा। साइकिल को भी बिना सीखे चलाने का हुक्म नहीं है, मोटर का कैसे हुक्म हो सकता है बिना सीखे, और हवाई जहाज के ऊपर उसको कैसे रखा जा सकता है बिना सीखे। परंतु जिसने साइकिल का आविष्कार किया, उसने पहले साइकिल को बनाया है, उसको साइकिल सीखने के लिए गुरु बनाना नहीं पड़ा है, वो गुरु बना है सबका। ऐसे मोटर का आविष्कार करने वाले ने दूसरे से मोटर सीख करके मोटर को नहीं चलाया, किंतु दूसरा चलाना चाहते उनको सिखाया है। ऐसे ही हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले ने हवाई जहाज की शिक्षा पहले नहीं ली है, हवाई जहाज कैसे चलाना चाहिए ये पहले सीख करके पीछे नहीं बनाया है, किंतु खुद ने बनाया है और सीखने वालों को सिखाया है। तो उसको कोई कहे तुम हवाई जहाज चलाना सीखो तो हंसेगा कि चलाना कैसी के बनाया किसने, तो उसको सीखने की जरूरत कैसी। ऐसे ही वे संत महापुरुष होते हैं, उनको कहे तुम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार से चलो तो वो सुन लेंगे, अरे अभिमान वहां होगा नहीं, हवाई जहाज बनाने वाले तो अभिमान होगा, उसमें अभिमान नहीं होगा। अरे अभिमान जब तक होगा तब तक सीखना पड़ेगा, तब तक शास्त्र का उसके ऊपर कानून लागू होगा। और जब अहंकार से मिट जाए, उठ जाएगा ऊंचा, तब फिर उनकी जो बातें निकलती है वो शास्त्र होगी, उनकी जो क्रियाएं होती है वो शास्त्र होगी स्वाभाविक, उसको सीखना नहीं पड़ेगा शास्त्र को, क्योंकि वो आचार्य हो जाएगा। हर एक विद्या का आचार्य होता है, आचार्य का अर्थ होता है उस विद्या पर अधिकार, ऐसे ही एमए होता है, उसका भी मतलब है कि अंग्रेजी विद्या पर अधिकार, इस पर ये अधिकार रखता है, ये उसमें चाहे जो कर सकता है। तो ये अधिकार प्राप्त होता है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब तो ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तब वो अधिकार हो जाता है। फिर जो करता है सो ठीक है। इस वास्ते द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा था कि मैं अपनी लड़की पांचों को नहीं ब्याहूंगी, ब्याहूंगा ही नहीं, पांचों को लड़की कैसे दे दूं, ये शास्त्र नहीं है, धर्म नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कहते हम पांचों ब्याहेंगे, नहीं मैं ब्याहूंगा नहीं, धर्म नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा, बताते हैं कि तू धर्म किसको सिखाते है, ये धर्मराज खुद है, ये करते हैं वो धर्म होता है, दूसरे लोग धर्म होता है वो करते हैं, और ये जो करते हैं वो धर्म होता है। ये ऐसे पुरुष नहीं कि तेरी लड़की को सुंदर देख करके मन चलावे, ब्याह करने के मन में आ जाए, ऐसे नहीं है। जो मनुष्य पदार्थों में आकृष्ट होकर के पदार्थ सेवन करता है, ब्याह करना चाहता है, वो धर्म को देख करके करे, नहीं करे तो डूब जाएगा। परंतु उसका आकर्षण ये नहीं कि तेरी लड़की को सुंदर देखा और मन चला लिया कि मैं ही ब्याह करूंगा, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि माँ की आज्ञा है, और माँ की आज्ञा क्यों हुई है, वो माँ भी ऐसी नहीं है, इसकी भी माँ है, वो भी ऐसी नहीं है मामूली, उसकी क्यों हुई है कि इसके यूं ही होने वाला, तो वो अंतःकरण शुद्ध होता है, ये धर्मात्मा का शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण में निर्मल हो जाता है धर्मात्मा का। परमात्म तत्व को जान जाए तो उसका दुख नहीं, क्या है महान अंतःकरण पवित्र होता है, परंतु तो शुद्ध नीत जिसकी होती है, अन्याय जो नहीं करता है, न्याय युक्त कार्य करता है, ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, जीवन मुक्त नहीं है बद्ध है, परंतु अन्याय से डरता है, कभी अन्याय के रास्ते में नहीं जाता, तो उसके अंतःकरण में अन्याय की बात नहीं होती, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और संत महात्मा होते हैं उनका तो महान पवित्र, इस वास्ते उनके आचरण उनके वचन शास्त्र बनते हैं, तो शास्त्रों को सामने रख करके उनको चलना नहीं पड़ता है, किंतु शास्त्र उनके पीछे पीछे चलते हैं। आत्मा रामास्त मुनयो निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, अहेतु किम भक्तिम कुर्वन, अहेतु की स्वाभाविक भक्ति होती है, स्वभाव भजन हमारे, उनका विशेषण दिया है कि निर्ग्रंथा, वे निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ के दोनों अर्थ होते हैं, सिज्जड़ ग्रंथी भेदन हो गया, अथवा ग्रंथों से शास्त्रों से ऊंचे उठ गए, निर्ग्रंथ है, शास्त्र में समान निवर्तते, शास्त्र उससे लौट जाता है, तो वे जो आचरण करते वो आदर्श होता है। इस वास्ते साधक के जब तक राग और द्वेष हैं, एक तरफ करने का मन करता है, एक तरफ से मन हटता है, एक भोगना चाहता है, एक को त्याग करना चाहता है, तब तक, कम से कम तब तक अपने मन को स्वतंत्रता न दे, किंतु शास्त्र को सामने रख करके चले, संत महापुरुषों को सामने रख करके चले। इस वास्ते हमारे शास्त्रों में कहा कि पतिव्रता स्त्री होती है, उसका कल्याण हो जाए पति की आज्ञा पालन करने से, कि वो जो प्रवृत्ति और निवृत्ति उसकी होगी अपने राग द्वेष से नहीं होगी, पति की आज्ञा से होगी। ऐसे ही माँ बाप की भक्ति से जीव का कल्याण हो जाए, कारण क्या है, उसकी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है वो माँ बाप के हुक्म से होगी, राग द्वेष से नहीं होगी। शिष्य का कल्याण हो जाए गुरु की आज्ञा पालन करने से, क्यों हो जाए, उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति गुरु जी की आज्ञा लेकर चलती, वो राग और द्वेष को लेकर नहीं चलती। जहां राग द्वेष को मिटाकर शास्त्र को, महात्मा को, गुरु को, पति को, अपने माँ बाप को, किसी को सामने रख करके चलेगा, उसके राग द्वेष नहीं रहे। पर तो ये बात जरूर है, उस आज्ञा पालन में भी जितनी श्रद्धा, जितनी तत्परता, जितना ऊंचा भाव होगा, उतना ही जल्दी राग द्वेष मिटेंगे, और जितने ये भाव कमजोर रहेंगे उतनी देरी लगेगी। आज्ञा पालन करते हुए भी राग द्वेष मिटने में देरी लगेगी, कारण क्या है, भाव कमजोर होता है तो आज्ञा पालन हट से होती है, श्रद्धा कम होती है तो विचार विवेक के द्वारा आज्ञा पालन करता है, तो राग द्वेष मिटा कहां, मन के विरुद्ध होने से द्वेष तो भीतर रहा, जान करके आज्ञा पालन करता है तो मिटने में देरी लगेगी, अगर श्रद्धा हो जाती है तब तो उत्साह हो जाता है आज्ञा पालन के लिए। जैसे भगवान श्री राम वनवास में पधारते हैं, उस समय माता कौशल्या कह रही है कि बेटा तेरे को और तेरे पिताजी ने वनवास दिया है, तो मैं रोकती हूँ तुम्हारे को रहना चाहिए, क्योंकि पिता से माँ का दर्जा बड़ा माना गया, तेरे पिता वनवास में भेजे तो मैं अयोध्या में रखूं, तेरा कर्तव्य होता है मेरा हुक्म पालन करना, इस बात से तेरे को यहाँ रहना चाहिए, बनवास से मत जाओ। परंतु कहीं तुम्हारे को माँ बाप दोनों ने कह दिया हो, दूसरी माँ ने कह दिया हो, तो तुम्हारा जंगल में जाना, वनवास में जाना 100 गुना अयोध्या है, अयोध्या 100 अयोध्या, तो कानून सतावध समाना 100 गुना अयोध्या वो अयोध्या। क्यों? पिता से तो मेरा दर्जा ऊंचा, मेरे से दूसरी माँ का दर्जा ऊंचा तेरे लिए, तो मैं अयोध्या 1 में रखूं और वो भेजे बनवास, तो बनवास 100 अयोध्या है, मेरे से 100 गुना है ना उसका, तो 100 अयोध्या का समान है। जब माता आज्ञा पालन के लिए निषेध करती है कि पिता ने कहा तो तुम बनवास मत जाओ, उस समय में राम जी कहते हैं कि माँ मेरे हाथ की बात नहीं है, पिता की आज्ञा टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, टाल नहीं सकता, समुद्र में कूद सकता हूँ, हलाल जहर पी सकता हूँ, प्राणों का त्याग दूं, अग्नि में कूद जाऊं, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, परंतु आज्ञा भंग मेरे से नहीं होती, पिता की आज्ञा टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं। जिस सीता के देखने से मन क्षुब्ध हो गया, कितना अखंड अटूट संबंध कैसे छोड़ सकते हैं राम जी, वो कह देते हैं छोड़ सकता हूँ, पिता की आज्ञा टाल नहीं सकता, टाल नहीं सकता। ये भाव जहां होता है आज्ञा में, दूसरी क्रिया हो नहीं सकती, तत्काल कल्याण हो जाए, एक आज्ञा से कल्याण हो तत्काल। परंतु विचार पूर्वक भी आज्ञा पालन करें, उससे भी लाभ होता है, उससे भी लाभ होता है। परंतु श्रद्धा जितनी अधिक होती है उतना अधिक लाभ होता है, तो राग द्वेष मिट जाएंगे ना, फिर राग द्वेष कहां रहे, तो इंद्रिय इंद्रिय सियार्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न भस्मागत से। तो कम से कम साधक के लिए बात चाहिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति उसको राग और द्वेष को लेकर न हो, राग को लेकर प्रवृत्ति न हो और द्वेष को लेकर निवृत्ति न हो, जरूर ऐसा होना चाहिए। तो ये बात है भाई, साधक के लिए बड़ी भारी आवश्यकता। तो ये चिंतन पहले होता है स्थूल में क्रिया में राग द्वेष, फिर होता है चिंतन में राग द्वेष, चिंतन हो तो अच्छा, चिंतन न हो तो द्वेष होता है, और सूक्ष्म शरीर का भी आग्रह मिट जाता है, तब फिर स्थिरता में आग्रह होता है, अटल वृत्ति स्थिर रहती रहे, बनी रहे स्थिर, अखंड वृत्ति बनी रहे, निर्विकल्प वृत्ति बनी रहे, उसमें उसको सुख प्रतीत होता है, शांति प्रतीत होती है, चित्त आकृष्ट होता है, चित्त खींचता है, तो सूक्ष्म शरीर में उसकी विशेष स्थिति है, नहीं कारण में स्थिरता में होता है, जब कारण में चिंतन में होता है तो सूक्ष्म समाधि होती है, समाधि वो कारण शरीर में स्थिति होती है, स्थूल शरीर का भान नहीं होता और संसार का चिंतन नहीं होता, स्थिरता होती है परमात्मा में, नींद आलस नहीं होते, नहीं तो वो तमोगुण में चला जाएगा। ऐसी स्थिरता में जब दृढ़ता होती है तो फिर चिंतन की आसक्ति मिट जाती है, अर्थात स्थूल शरीर की आसक्ति मिट जाती है। अरे मिटाने के लिए क्या करे, क्रिया में आसक्ति रहे तो स्वार्थ का त्याग करके क्रिया करे, और चिंतन में आसक्ति रहे तो चिंतन की आसक्ति का त्याग, आग्रह का त्याग करके और केवल भगवान का चिंतन करे, और स्थिरता में बना रहे और चिंतन का रस न ले, सुख न ले। जैसे क्रिया का सुख लेकर स्वार्थ लेता है तो स्थूल आसक्ति नहीं मिटती, ऐसे चिंतन की आसक्ति है, रस लेता रहता है तो चिंतन की आसक्ति नहीं मिटती, सुख शरीर की आसक्ति नहीं मिटती, उसका रस न लेकर स्थिरता में अखंड रहता है, स्थिरता में समाधि में सुख लेता है, समाधि का रस लेता है आनंद लेता है तो फिर कारण शरीर की आसक्ति नहीं मिटती। कारण शरीर में स्थिरता भी रस लेता था, आसक्ति बनी रहेगी। तो स्थिरता तो बनी रहे पर स्थिरता से असंगता लावे। स्थिर का रस लेना है, संग लाना है, उसके साथ दे देना है। तो असंगता है वो कारण शरीर से भी ऊंचे उठाने वाली है। असंगता समाधि से भी असंगता, पदार्थों से, भोगों से, व्यक्तियों से असंगता है ही, चिंतन से भी असंगता और समाधि से भी असंगता। उस समाधि स्थिरता में भी संग नहीं, आग्रह नहीं है, परंतु अटलपना सतह, स्वाभाविक निर्विकल्प वृत्ति, बिना उद्योग के, बिना प्रयत्न के, बिना चेष्टा के, बिना किए स्वतः स्थिरता, उस स्थिरता में अटल स्थित रहे। उसमें अटल स्थित रहने से स्वतः प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह से हम नदी से पार जाना चाहते हैं और हमें नौका मिल जाए, तो नौका भी कैसी मिली? नौका मिली बर्फ की, और नदी करना है पार, तो बर्फ की नौका में अगर वहीं बैठे रहेंगे तो वहीं गल जाएंगे, डूब जाएंगे। जिस धातु की नदी उसी धातु की नौका, उस नौका से पार करें तो जल जल को तो पार कर दें, जल को पार करके और किनारे तक पहुंच जाएं, वहां पहुंचने पर भी नौका भी छोड़ दें, पृथ्वी पर चले जाएं, नौका ही पानी हो गया। ऐसे संसार समुद्र है, इसे तरने के लिए बढ़िया से बढ़िया हमारे पास है बुद्धि, मैपन और अपनी बुद्धि। उस मैपन के उद्देश्य न रख करके बुद्धि के द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण सर्व शरीरों को बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हटावे, और उस बुद्धि है उसको कैसे हटावे, उसमें अटल स्थित हो जाए, किनारे जाकर अटल स्थित हो जाए। अटल स्थित होने से बुद्धि आप साफ गल जाएगी, जैसे बर्फ की नौका गले जू, उसे फिर प्रयत्न नहीं है। पहले तो प्रयत्न है, स्थूल शरीर से पार पाने के लिए प्रयत्न, सूक्ष्म शरीर से पार पाने के लिए प्रयत्न, और उन प्रयत्नों के बीच में राग न हो, आसक्ति अटकाव न हो, खिंचाव न हो, और प्रयत्न हो, और कारण शरीर में अटल स्थित होना, वहां प्रयत्न नहीं, अप्रयत्न हो जाना है। गौड़ पदाचार्य लिखते हैं, वहां अगर परीक्षा भी करेगा तो उसे नीचे उतर जाएगा कि मन थे है कि नहीं, तो थिर नहीं रहेगा, चंचलता आ जाएगी। और उसको अगर छोड़ देगा तो नीचे उतर जाएगा, और उसमें अगर सुख लेगा तो रस स्वाद आकर फंस आउट हो जाएगी, विघ्न आ जाएगा। तो ना तो उसमें आनंद मनाना चाहिए, ना उसको हटाना चाहिए, और ना उसमें रस लगाना चाहिए। वो बात अखंड वैसे ही बनी रहे, विचलित भी नहीं होना चाहिए, है जो अखंड बनी रहे, और बनी रहे ये भी आग्रह न हो, किंतु तटस्थ हो जाए, असंग हो जाए, जिस तरह से मकान से दूर रह जाए अपना, जो समाधि को भी असंग छोड़कर असंग हो, तो फिर स्वतः तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तीनों शरीरों से अलग जो तत्व है उसकी प्राप्ति, मोक्ष जो कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, चौथा पद कहते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। सार बात ये निकली कि भाई किसी जगह आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, संग नहीं रहना चाहिए, असंगता है ये मुक्ति करने वाली। क्रियाओं में असंग हो जाओगे तो क्रियाओं के रस में नहीं फंसोगे, चिंतन से असंग हो तो चिंतन के रस में नहीं फंसोगे, समाधि से असंग रहो तो असंग उसमें नहीं फंसोगे। ऐसे ही कुटुंबी आदि सबके साथ असंग रहो। असंग होने के लिए उपाय है एक, कि दूसरों से सुख लो मत और अपना सुख दूसरों को देते रहो। अपना सुख दूसरों को नहीं दोगे, सेवा नहीं करोगे, तुम्हारे पास जितना सुख है सामग्री है उसमें आसक्ति हो जाएगी, और दूसरों से सुख लोगे तो नई आसक्ति पैदा हो जाएगी। पुरानी आसक्ति मिट जाए और नई आसक्ति पैदा न हो तो असंगत आ जाएगी। तो सेवा कर रहे हैं परंतु किसी लेने के लिए नहीं, मान सत्कार बढ़ाई के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, पद पाने के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं। तब वो जितनी सेवा कर रहे हैं वो कर्जा उतर रहा है और नई आसक्ति पैदा नहीं हो रही है। और दे रहे हो और लेने के लिए दे रहे हो तो डेढ़ा काम चलता है, व्यापार चलता है, आसक्ति मिटेगी नहीं। इस वास्ते जनता की सेवा करना, पर जनता के सुख में आसक्ति नहीं होना, जनता से लेना नहीं चाहना। लेने की चाहना एक गलती की है। इस वास्ते हमें कुछ लेना ही नहीं है ऐसा भाव बना लेना चाहिए, किसी से भी कुछ लेना नहीं। और जब आसक्ति मिट जाती, अहंकार मिट जाता है, लोगों को लेता दिखता है तो ही देता है, और देता दिखता है तो ही देता है। अरे आसक्ति अहंकार है तो देता है तो ही लेता है, लेता है तो ही लेता है। व्यापारी आदमी देता है तो ही लेता है, और लेता है तो ही लेता है। और त्यागी है, वो त्यागी है, वो देता है तो ही देता है, लेता है तो ही देता ही है। मन वो अन्न जड़ भी स्वीकार करता है तो ही दुनिया के हित के लिए, दुनिया की सेवा के लिए। लेना भी देना, देना भी देना, क्योंकि लेना है वो अपने में है ही नहीं। जिस धातु का चीज संसार उसी धातु का शरीर है, उस शरीर से काम करता, सेवा करता है। दुनिया की चीज है उस सेवा में ले लेता है शरीर में, तो शरीर में जैसे लेता है ज्यों ही तो दुनिया की सेवा करता है, ज्यों दूसरे शरीरों की सेवा करता है, ज्यों ही तो उस शरीर की सेवा करता है, लेता कहां? वो तो देता ही है। इस वास्ते स्वार्थ और अहंकार है ये बांधने वाले हैं, आसक्ति ये बांधने वाली है, संघ ये बांधने वाला है। तो ये सदा से त्याज्य है, ये त्याग करोगे तो परमार्थ हो जाएगा और परमात्मा में प्रेम हो जाएगा। स्वार्थ की जगह परमार्थ और आसक्ति की जगह प्रेम। आसक्ति में अपनी तरफ खींचा होता है, अपना मन खींचता अपनी तरफ, और प्रेम में अपनी तरफ नहीं, अपने आप को दे रहा। इस वास्ते प्रेम बताया, प्रेम अनिर्वचनीय है, शुद्ध है, निर्मल है, कामना रहित है, प्रतिक्षण वर्धमान है, अविच्छिन्न रूप है, ऐसे उसके विशेषण आए। तो क्यों है कि वो सेवा करने के लिए है। तो भगवान के प्रेमी होते हैं वे भगवान से भी चाहते नहीं है, भगवान को भी सुख देने के लिए चेष्टा करते हैं। हमारे प्रीतम प्रभु को सुख हो, सेवा करते हैं ना, भगवान को सुख कैसे हो। गर्मी लगती होगी पंखा डुलाओ, भगवान को सुख कैसे हो। भोजन भगवान को कराओ, गर्मी बहुत है, बढ़िया भोजन ठंडा, असली शीत को शांत देने वाला, बासी नहीं, ऐसा भोजन कराओ। सर्दी के दिन है, गर्मा गर्म भोजन हो, अंगीठी रखो, गर्म कपड़ा तो रुईदार कपड़ा पहनाओ, उनको कोई दुख न हो जाए, उनके सुख में अपना सुख, अपनी परवाह नहीं होती, अपनी परवाह नहीं होती। एक बैरागी साधु को मैंने देखा था, शीतकाल खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी गोरखपुर की तरफ, ना गाड़ी में चढ़े, एक लंगोटी राख लगाई हुई और पास कोटली कपड़े के, कपड़ा था ही नहीं, इसमें क्या है तो देखा है मखमल का कोट था बढ़िया, उसमें धनुष बाण रखे हुए थे। ये क्या कि रघुनाथ जी का कोट है, रघुनाथ जी को सी लगे, उसमें धनुष बाण चांदी के बनाए हुए, ये धनुष बाण है, रघुनाथ जी को सी नहीं लग गया, अब कोट लिए फिरता है उघड़ा है। आपके सुख की परवाह नहीं, अपना दुख की परवाह नहीं, तो रघुनाथ जी को सी कैसे लग गया, बढ़िया कोट है सिलाया हुआ। तो तत्सुखे सुखित, फिर प्रेम पैदा हो जाता है। हमारे चित्त का जो आकर्षण है, ये जब अपने सुख का परित्याग कर दूसरे सुख के लिए हमारा आकर्षण हो जाए, मन तो हमारा खींचे पर सुख उसको देने के लिए, तब हो जाता है प्रेम। और अपने सुख के लिए मन खींचता तब हो जाता है स्वार्थ आसक्ति। और वो अपने सुख के लिए स्त्री तरफ खींचता है तो हो जाता है काम। वो ही अपने सुख के लिए पैसों में खींचता है तो हो जाता है लोभ। और वो ही अपने कुटुंबियों को सुख मेरे समझ करके मन खींचता है तो हो जाता है मोह। है वो एक ही, बिना आकर्षण के लोग नहीं है, कोई भी जीव नहीं है, परंतु आकर्षण के पात्र अलग अलग है। भगवान जब आकर्षण के पात्र होते हैं और अपने त्याग के लिए आकर्षण होता है, छोड़ने के लिए आकर्षण होता है, चीजें सुहाती नहीं छोड़ने में रस सुख होता है, वो भी तो एक सुख ही है, मगर वो त्याग में हो जाएगा। दूसरे के सुख के लिए होता तो वो प्रेम में हो जाएगा, और को आराम देने के लिए वो प्रेम में परिवर्तन हो जाएगा। जहां जहां हमारी आसक्ति हो वहां वहां उससे सुख लेने की प्रवृत्ति छोड़ने और सुख देने की प्रवृत्ति करें, सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति हमारी होने लगे, ठीक हो जाएगा। फिर गृहस्थाश्रम है, ये गृहस्थाश्रम आसक्ति के मिटाने के उद्देश्य से था। आसक्ति मिटाने के लिए कैसे, कि जो सुख लेना जो भोग भोगना हो उसको तटस्थ होकर के देखे कि सुख कितना है, विचार विवेक पूर्वक देखे पहले कैसी वृत्ति रही पीछे कैसी वृत्ति रही, इस तरह से विवेक शक्ति हो तो देखे। मान लो मन में आई कि 100 रुपया हमें मिले, मन में पता होगी और उद्योग किया 100 रुपये मिल गए, अरे मिलने पर संतोष हो गया, ये होता है नहीं, लाभ होने से लोभ बढ़ता है, पर संतोष हो गया तो संतोष होने पर हमारी स्थिति क्या हुई कि जब तक 100 रुपयों की इच्छा पैदा नहीं हुई थी उसी स्थिति में पीछे आ गए, रुपये की इच्छा हुई 100 रुपये आए, आने के बाद इच्छा नहीं रही, तो जब तक इच्छा नहीं थी उसी स्थिति में आए, तो रुपयों की इच्छा उसके लिए उद्योग, ये तो कोलू के बैल के लिए चक्करी काटा कोरा शुरू हुए, वहीं पीछे आ गए। तो गाड़ी का बैल उम्र भर चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है, वहां का वहीं, एक कदम नहीं गया। ऐसे इच्छा करी भोग मिला इच्छा मिटी तो भी कहीं नहीं गया, इच्छा नहीं मिटी तो आग और लगी नहीं। ऐसे वृत्ति पूर्वक भोग भोगे तो आदमी का मन उससे ऊंचा उठ जाता है, स्वाभाविक ऊंचा उठता है कि भाई इसमें रस तो मिला तो कुछ नहीं, मिला क्या कि तो कुछ तो मिला होगा, कुछ मिला क्या मिला, उम्र खत्म हुई, हृदय में जलन हुई, उद्योग में झूठ के पड़ गया तो पाप हुआ, आदत बिगड़ी, समय बर्बाद हुआ, ये चीजें पैदा हुई, मिला कुछ नहीं। भोग भोगने की जब तक इच्छा नहीं थी और भोगने के बाद जब इच्छा नहीं रही तो पैदा ही नहीं हुई इच्छा, जिससे जिस स्थिति उसी स्थिति में पीछे आ गए। पर जब तक पैदा नहीं हुई तब तक शरीर बलवान था, वो बलवान नहीं रहा, उसमें जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं रही, उसमें जो शांति थी वो शांति नहीं रही, पहले जैसी बुद्धि थी वैसी बुद्धि नहीं रही, और मिला कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं आया।